ओम शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और जय हिंद। आदरणीय एवं सम्मानीय मंच एवं सभा में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो आज आप सभी का इस विषय पर मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। आई एक्सटेंड अ वेरी वेरी हार्टी वेलकम टू वन एंड ऑल माई डियर डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स to this beautiful interaction that we are going to have today. I want to begin on a very very light note. Ek bar kya hua, dada jo the apne potre ko, the grandson ko, subah subah school chhodne ke liye ja rahe the. Naturally potra ka jo bada bhari barkam jo bag tha wo dada uthakar chal rahe the, and the boy was in a total state of bliss. To dada chalte chalte us जो ग्रैंडसन था वो ऊपर देखकर बहुत खुशी से चल रहा था, तो दादा ने सोचा मैं उसको कुछ एक बात बताऊं। तो दादा ने कहा अपने पोतरे को, ग्रैंडसन से पूछा, माय डियर बॉय कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। तो उस बच्चे ने पूछा, दादा बताइए कौन सा प्रश्न है। तो दादा ने कहा, बेटा कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मून एंड द अर्थ, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में क्या संबंध है। तो बेटा ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा वो तो आपस में भाई और बहन है। तो दादा ने पूछा वो कैसे। तो बच्चे ने कहा, क्योंकि दादा जो चंद्रमा है उसको हम मामा कहते हैं और पृथ्वी को हम माँ कहते हैं, तो आपस में वो भाई बहन हुए ना। तो दादा बहुत खुश हुआ, बोला वाओ यू आर वेरी इंटेलिजेंट। फिर दादा ने कहा, कैन आई आस्क यू अ सेकंड क्वेश्चन। तो पोतरे ने कहा, ओके दादा व्हाट इज योर सेकंड क्वेश्चन। तो दादा ने कहा, अच्छा बच्चे बताओ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सन एंड द स्टार्स, सूर्य और सितारों के बीच में क्या संबंध है। तो ग्रैंडसन था वो एक मिनट सोचकर कहा, दादा दिस इज आउट ऑफ सिलेबस दादा। तो दादा ने कहा, वाओ अच्छा। तो दादा ने कहा, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन माय डियर बॉय, लेट मी हेल्प यू टू गेट दिस आंसर। तो दादा ने उस पोतरे से कहा, अच्छा बताइए अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला उस शिक्षक की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या होगी। तो बच्चे ने कहा, दादा मिनिमम क्वालिफिकेशन वो खुद एक इंजीनियर तो होना चाहिए। तो दादा ने कहा, दैट्स ग्रेट। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा अगर MBBS मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले उस शिक्षक की क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो बच्चे ने कहा, दादा मिनिमम वो एक डॉक्टर तो होना चाहिए। फिर दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बच्चे बताओ अगर आउट ऑफ सिलेबस अगर पढ़ाना है तो उस शिक्षक की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। सभी डियर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बैठे, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस शिक्षक की, कुछ बोलती नहीं है। क्या होनी चाहिए, कॉमन सेंस होनी चाहिए। अरे भाई इंजीनियरिंग बच्चों को पढ़ाने वाले की मिनिमम क्वालिफिकेशन इंजीनियर होना चाहिए, MBBS बच्चों की मिनिमम क्वालिफिकेशन वो डॉक्टर होना चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाने वाले उस शिक्षक की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस होना चाहिए ना, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन एटलीस्ट आउट ऑफ सिलेबस होना चाहिए, राइट। एंड दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर आप आए हो ना, यहां पे शायद बहुत सारी बातें आप जो सीखेंगे समझेंगे शायद आउट ऑफ सिलेबस होगी। आप ये कितना अनुभव कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूं कि वे बैक इन 1996, आज से करीब 16-17 वर्ष पहले, मैं भी आपकी तरह वहां बैठा था एंड आई वॉज इन्वाइटेड टू द साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स कॉन्फ्रेंस। जब मैं यहां पर आया तो मुझे निमंत्रण मिला ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की तरफ से, तो मुझे लगा जैसे एक कॉन्फ्रेंस होता है अभियंताओं का शायद वैसे ही कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन जब मैं यहां पहुंचा और पहली बार जब मैं पहुंचा, मैंने यहां का सारा सिस्टम देखा और काफी मैंने बातों को समझने का प्रयास किया, लेकिन एक बात जो उस समय जिसका मैं प्रश्न ढूंढने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि उस समय आई वॉज वर्किंग एज ए डिजाइन इंजीनियर इन इंडस्ट्री, और उस समय हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अगर कोई इंजीनियर हमारे पास आता था, हमारी इंडस्ट्री में होता था, अगर वो बहुत स्किल्ड होता था तो उसको रिटेन करना हमारे एचआर डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, और शायद ये चुनौती हर इंडस्ट्री में होगी। मैं जब 1996 में यहां पर आया और ये सारे सिस्टम को मैंने देखने का प्रयास किया, तो मैंने ये महसूस किया कि यहां पर इतने भाई बहने अपने जीवन को समर्पित करके जीवन जी रहे हैं, और मैंने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि इनका मंथली रेम्यूनरेशन कितना होता है। और उस समय मुझे पता चला कि नो देयर इज नो सिस्टम ऑफ बीइंग पेड। फॉर मी इट वाज अ ग्रेटेस्ट चैलेंज टू माय बिलीफ सिस्टम, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में हम इतने पैसे देकर भी लोगों को रिटेन नहीं कर पाते, यहां मैंने एक ऐसा सिस्टम देखा। और उसका मैं जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहा था. सो माय डियर फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट 3 डेज यू विल बी हियर. आपके मन में भी काफी प्रश्न आएंगे. इस प्रश्न को, इसको समझने का प्रयास आप जरूर करना. कैन बी मूव टू अ जर्नी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. वैसे आज जो हमारा जो विषय है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टॉपिक. इट इज होलिस्टिक इंटेलिजेंस फॉर लाइफ एक्सलेंस. तो मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न, जो हमेशा इस मंच से मैं बोलता हूं, और ये अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लाइफ एक्सलेंस की बात है. सो फ्रेंड्स, आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन. व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? जिंदगी क्या है? आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है ना? बहुत अच्छा. मैं अपने स्टूडेंट्स अगर कोई भी प्रश्न पूछता हूं, जवाब नहीं मिलता, तो स्टैंडर्ड जवाब देते, सर आउट ऑफ सिलेबस, सर आपने हमें नहीं पढ़ाया. इनफैक्ट आई एम इन नवी मुंबई. तो नवी मुंबई में जब हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कभी कभी MBA के लिए आते हैं, तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं, जब वो इनवाइट करते मुझे कि स्वामी भाई आप जरूर पैनल में जरा आप रहना, अगर मुझे, मेरे पास टाइम होता है तो मैं जरूर पैनल में मुझे अटेंड करना बहुत अच्छा भी लगता है. तो ये जो मेरे इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स आते हैं MBA के एडमिशन के लिए, तो ये 4 साल में इंजीनियरिंग में क्या पढ़े कभी नहीं मैं पूछता हूं. आई ऑलवेज आस्क देम लाइफ ओरिएंटेड क्वेश्चन. और वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन विच आई लाइक इज व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है. तो मुझे अक्सर करके स्टैंडर्ड जवाब मिलते हैं, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं, सर लाइफ इज अ जर्नी सर, नॉट अ डेस्टिनेशन. जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, मंजिल नहीं. कुछ बच्चे ये भी कहते हैं, सर लाइफ इज अ चैलेंज सर, जीवन एक बहुत बड़ा संघर्ष है. ये सुनते ही साथ मुझे समझ में आ जाता है कि बंदा लोकल ट्रेन चढ़कर आया है, क्योंकि मुंबई में लोकल ट्रेन चढ़ना संघर्ष, उससे उतरना उससे बड़ा संघर्ष. इनफैक्ट एक कैंडिडेट का जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो मैंने उसको कहा, माय डियर बॉय, दैट वाज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विद यू, वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू. तो ये कैंडिडेट जैसे ही जाने लगा तो उसने पीछे मुड़कर मुझको कहा, सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई गेट योर मोबाइल नंबर. मैंने कहा व्हाट? बोला, सर प्लीज गिव मी योर मोबाइल नंबर. अब इतनों को नंबर देते, वाई टू क्रिएट अ सीन. मैंने कहा नोट करिए, फटाफट नोट किया, थैंक यू सर, थैंक यू करके गया. 8-10 मिनट के बाद ना मेरे मोबाइल में एक SMS मैसेज आया. तो मैंने वो मैसेज रीड किया, तो जीवन की एक बहुत सुंदर परिभाषा, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो आई शेयर्ड इट विद माय फेलो पैनलिस्ट, सबको बहुत अच्छा लगा. आई थॉट ऑफ रिंगिंग अप दिस बॉय. तो इस लड़के को मैंने रिंग किया, तो दैट बॉय पिक्ड अप द फोन. तो मैंने उसको पूछा, जीवन के बारे में अचानक कहां से पता चला? तो ये कैंडिडेट मुझे मोबाइल में फोन करता है, सर गूगल सर्च इंजिन सर. और उस दिन मुझे पता चला कि हमारे बच्चे जीवन के बारे में कहां ढूंढ रहे हैं, गूगल में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शायद उस स्कूल कॉलेज में हम टीचर्स ने बताया नहीं है. लेकिन ये डेफिनेशन मुझे इतनी पसंद आई, आई वुड लव टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू. उसने जो SMS मैसेज भेजा था, लिखा था, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, लाइफ इज अ ड्रीम. देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, लेकिन ईश्वर कहते हैं मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी. सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी. This is what I learnt it from this wonderful, boy. अब हम थोड़ा सा इंटेलिजेंस की तरफ जाते. मुझे याद आता है एक बहुत अच्छा अनुभव. Once I was, going to take a lecture for my 6th semester mechanical engineering students. तो जैसे मैं क्लास में एंट्री किया तो मैंने देखा हमारे सारे जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं एक ही प्रकार के टी शर्ट पहने. एंड इन द टी शर्ट देयर वाज समथिंग वाज स्क्रिबल्ड देयर. तो मैंने कहा बताओ बताओ क्या लिखा. दे आर ट्राइंग टू हाइड. मैंने कहा बताना क्या लिखा. नहीं सर, आज सुबह से टीचर्स का इतना फायरिंग मिला. मैंने कहा ओके, आपको पता है ना स्वामी, सर नेवर गेट्स एंग्री विथ यू, बताओ बताओ. तो वन बॉय टुक द रिस्क और उसने थोड़ा बताया. तो उसके टी शर्ट में मालूम क्या लिखा था, सभी ने एक ही प्रकार का टी शर्ट पहना था. उसमें लिखा था, एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर नंबर अमंग आवर स्टूडेंट्स, उसमें सभी बच्चों ने यही लिखा था अपने टी शर्ट में, आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन रियूंड मी. आई अगेन से उन्होंने जो लिखा था, आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन रियूंड मी. और जैसे ही मैंने उसको देखा ना, मैंने बिल्कुल चिल्लाया नहीं, मैंने डांटा नहीं. मैंने कहा आप लोग ने, बच्चों ने ये क्यों लिखा है ये तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन एज अ टीचर इट बिकम्स माई प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन टू दिस स्टेटमेंट. एक शिक्षक होने के नाते मुझे इस पर जरूर विचार करना चाहिए. एंड माई डियर फ्रेंड्स, मैं उस पर विचार करने लगा और उसका जो रीजन जो मुझे मिला मैं आपके साथ शेयर करता हूं. आप सभी भी पढ़े लिखे अनुभवी हैं, अगर आप मुझे इस वर्षन को अगर अपग्रेड करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम एंड आई एल बी वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट इट. मैंने देखा ये बच्चों ने क्यों लिखा था, तो मैंने महसूस किया जब उन्होंने लिखा आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट, मतलब मैंने ये महसूस किया कि जब छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, अर्थात इतने वो क्रिएटिव होते हैं, उनके हर इतनी क्यूरियोसिटी उन बच्चों के मन में होता है। और हमेशा बच्चों अपनी माँ से पूछते, बच्चे, मामा व्हाई डज द स्काई लुक ब्लू, मामा हाउ डज अ ट्रेन रन ऑन द ट्रैक्स, एवरी टाइम दैट क्यूरियोसिटी दैट क्रिएटिविटी इज देयर एंड ही इज वेरी विलिंग टू गेट दैट आंसर। माँ थोड़ा बहुत प्रश्न का जवाब ढूंढ देने का प्रयास करती है, जब मामा थक जाती है तो मामा एक डायलॉग बोलती है बच्चे से, बेटा नथिंग टू वरी, जब आप स्कूल जाएगा ना तो आपको वहां जवाब मिलेगा। द बॉय इज वेरी हैप्पी द फर्स्ट डे, बॉय जो लड़का हो तैयार होकर स्कूल में जाता है विद दिस यू नो ऑब्जेक्टिव कि शायद वो ये सब सीखेगा। लेकिन जैसे ही वो स्कूल में पहुंचता है, ही वॉन्ट्स टू नो वाई डज द स्काई लुक ब्लू, और टीचर स्टार्ट होती है, बच्चों बोलिए ए फॉर एप्पल, एंड द बॉय इज कंफ्यूज, हेलो मैं तो आया था स्काई, व्हाई डज द स्काई लुक ब्लू, ये ए फॉर एप्पल कहां से आया? वो कहता है चलो थोड़ा सा पेशेंस रखते, दूसरा दिन होगा, और बी फॉर बैट। नाउ यू नो वन डे उसका पेशेंस खत्म होता है, और एक दिन ये बच्चा टीचर से पूछता है, मैडम यू प्लीज टेल मी व्हाई डज द स्काई लुक ब्लू, और मैडम एकदम उसको एकदम देखकर कहती है, नो इट्स अ थर्ड स्टैंडर्ड सिलेबस, फोर्थ स्टैंडर्ड सिलेबस, नाउ प्लीज डोंट आस्क क्वेश्चंस एंड लर्न व्हाट आई एम टीचिंग यू, राइट। और धीरे धीरे ये बच्चा वेट करते करते करते, माय डियर फ्रेंड्स, ये जब बच्चे इंजीनियरिंग क्लासरूम में पहुंचते हैं, इनकी अवस्था पता क्या होती है? सर आपको जो बोलना है बोलिए सर, हमारे तरफ से कोई तकलीफ नहीं, यू कंटिन्यू सर। नाउ दिस इज द स्टेटस दैट वी हैव रीच्ड, वी हैव बीन बेसिकली डिस्ट्रॉयड देयर यू नो एंटायर क्रिएटिविटी। इसे माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एक कंसेप्ट आता है विच इज कॉल्ड एज होलिस्टिक इंटेलिजेंस। और एज ए टीचर मैंने ये महसूस किया है कि ये होलिस्टिक इंटेलिजेंस क्यों बहुत बहुत जरूरत है। और आज जो हमारे बच्चे स्कूल और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई कर रहे हैं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द सिस्टम, प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी, बट एक शिक्षक होने के नाते मैं अपने इमोशंस को शेयर कर रहा हूं। आज जो हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके एजुकेशन सिस्टम की हाल क्या हो गया, वॉट इज दैट हैपेंड। और मैं बहुत खुशी से और बहुत जिम्मेवारी के साथ ये कह रहा हूं कि हमारा प्राचीन भारत का जो गुरुकुल सिस्टम था, जिसमें होलिस्टिक इंटेलिजेंस था, दैट वॉज मच मच बेटर देन वॉट वी आर डूइंग टूडे। बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं और बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं। मैं इस विश्वास के साथ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इट इज बेस्ड ऑन लॉर्ड मैकले सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और आप सभी को शायद आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड मैकले ने 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो एड्रेस किया, और खुशी होती है सुनकर ये पढ़कर कि लॉर्ड मैकले ने 1835 में जो भारत की महिमा की, आपको अच्छा लगेगा मुझे विश्वास है। और ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड मैकले ने एड्रेस किया, उनको हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ग्रेटेस्ट टेक्नोक्रेट ऑफ द कंट्री, भारत रत्न डॉक्टर कलाम ने अपने कन्वोकेशन एड्रेस में दिया था, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में न्यू दिल्ली, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, एंड दिस वॉज रिपोर्टेड ऑन द हिंदू ऑन 2 सितंबर 2004। हम सबको पता है डॉक्टर कलाम वॉज अ प्रेसिडेंट फ्रॉम 2002 to 2007। सो आई कोट वॉट लॉर्ड मैकले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट, अब ध्यान देना डेट 2 फरवरी 1835। इट विल टेक 2 मिनट्स बट यू विल बी वेरी हैप्पी एंड यू विल अंडरस्टैंड अवर टॉपिक ऑफ होलिस्टिक इंटेलिजेंस। लॉर्ड मैकले ने एड्रेस किया था, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज अ बेगर, हु इज अ थीफ, सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country. आगे वो लिखते हैं, unless we break the very backbone of this nation, which is a spiritual and cultural heritage, and therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. This was Lord Macaulay's address to the British Parliament. My dear friends, aaj yahan baithkar hame ye mehsoos ho raha hai ki ye jo topic jo chuna gaya, holistic intelligence, is very much appropriate. Aur iska jo objective ye hai, jaise hum kehte hain holistic diet, जिसमें फैट्स भी होना चाहिए, प्रोटीन्स भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए। हम लोग आजकल प्रश्न उठाते हैं या डिस्कस करते हैं ऑन होलिस्टिक हेल्थ, जहां पर सारे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ को कवर करें। उसी तरह जब ये कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव है, जब हम कह रहे हैं होलिस्टिक इंटेलिजेंस, इसमें जो अलग अलग प्रकार के जो इंटेलिजेंस का समावेश होना, ये बहुत बहुत जरूरत है। इसे माय डियर फ्रेंड्स, टुमारो सेशन संडे 19th में जो 4:30 से 6 बजे तक जो सेशन होगा, मैं जरूर जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इट्स काइंड ऑफ अ वर्कशॉप जहां पर आप भी जरूर जरूर शेयर करना, क्योंकि आप सभी अपने अपने क्षेत्र पर अनुभवी हैं, जिसमें ये समावेश सोचने का प्रयास किया जाएगा जहां पर रिलेशनशिप इंटेलिजेंस, मेंटल इंटेलिजेंस, हेल्थ इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होना बहुत बहुत जरूरत है। और ये सारे जब इंटेलिजेंस हम महसूस करते हैं तो शायद वी बिकम होलिस्टिकली वेरी इंटेलिजेंट। नाउ आज हम अपने इंडस्ट्री में, अपने वर्क प्लेस में सभी काम करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट अनुभव कर रहे हैं। सिस्टर शिवानी बहन वॉज स्पीकिंग अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेरा अनुभव ये कहता है कि आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम लास्ट वीक इन मुंबई, तो जब उन्होंने फोन किया तो मुझसे पूछा, स्वामी भाई आप कौन से टॉपिक पर डिस्कस करना चाहेंगे? तो यूजली मेरे इमीडिएटली मैंने कहा स्ट्रेस मैनेजमेंट। यू नो व्हाट द रिप्लाई आई गॉट फ्रॉम द एचआर पर्सन? उन्होंने कहा, नहीं स्वामी भाई, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज एन ऑब्सोलीट आउटडेटेड टॉपिक। मैंने कहा, अच्छा नया टॉपिक क्या है? बोला, स्वामी भाई अभी जो हमारे इंडस्ट्री नया टॉपिक पर काम कर रहा ना, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। स्वामी भाई, कैन यू स्पीक ऑन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट? मीन्स इतनी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है और हम ये महसूस कर रहे हैं कि हैव वी अपग्रेडेड आवरसेल्फ्स। तो ये 3 दिन में अगर मेरे जीवन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट माय डियर फ्रेंड्स कि कौन से इंटेलिजेंस शायद आई हैव टू अपग्रेड माय वर्शन। और जब आप ये करेंगे तो अपने देश के बारे में, विच वेरी सून भारत विल बिकम द लाइट हाउस एंड माइट हाउस ऑफ द वर्ल्ड। और हमारे सामने जो आदरणीय मंच बैठा है सभी अनुभवी हैं, और खास करके हमें बहुत खुशी है कि डॉक्टर निर्मला दीदी जी आज बैठे हैं, जो सारे देशों में चक्कर लगाकर इस होलिस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में विश्व के अलग अलग जाकर उन्होंने ये बात को रखा हुआ है, एंड वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर। तो ये जो इंटेलिजेंस को आप जानेंगे तो आप ये बात को महसूस करेंगे कि हमारा जो भारत प्राचीन में वॉज वेरी साइंटिफिकली एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस। मैं बहुत सारे विषय हैं, मैं बस 2 बात को टच करूंगा जो आज हमारे विषय से संबंधित रखता है। पहला, एक समय पे जमाने को लगता था कि द अर्थ वॉज फ्लैट। इट वॉज द फर्स्ट टाइम पाइथागोरस ने कहा कि नो द अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट इज राउंड, राइट? अब नेचुरली अगर आप एक सीधे सीधे रास्ते पर जा रहे हो और अगर आप मुझे कोई कहता है कि अर्थ इज राउंड, फॉर मी इट इज डिफिकल्ट टू विजुअलाइज, राइट? लेकिन जब हम इस धरती से थोड़ा उठ पाते हैं तो हम समझ जाते हैं, हेलो आई कैन सी नाउ द अर्थ इज राउंड और स्फेरिकल। लेकिन पाइथागोरस फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने महसूस किया कि पृथ्वी गोल है। जब वो कहते पृथ्वी गोल है, पाइथागोरस ने ये कहा है, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति में बहुत जमाने से उसको कहते थे भूगोल। भू मीन्स धरती, गोल मीन्स सर्कल, राउंड। ये तो हमारे भारत प्राचीन में कहते संस्कृति में कहते थे ना। एक और बात को हम लेते हैं, गैलीलियो फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा था कि भाई पृथ्वी कॉन्स्टेंट है और धरती जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। और हम सभी ने पढ़ा है, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, इतिहास ये कहता है कि गैलीलियो ने जब कहा लोगों ने बहुत अपोज किया। और हम सभी को पता है कि गैलीलियो के 7 वर्ष, द लास्ट 7 ईयर्स ही वॉज बेसिकली इन अ आइसोलेटेड प्लेस, उसको प्रिजन जेल में डाल दिया ताकि वो किसी लोगों से नहीं मिले, क्योंकि जब भी लोग गैलीलियो से मिलते थे तो गैलीलियो बहुत विश्वास के साथ कहता था, वो कहता था इट इज नॉट द अर्थ दैट इज कॉन्स्टेंट बट इट इज अ सन दैट इज कॉन्स्टेंट। लेकिन आज हम महसूस करते हैं कि पाइथागोरस ने जो कहा है, गैलीलियो ने जो कहा है, आज सही है। क्यों सही है? थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, मेरा एक बिलीफ सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, 1996 में जब मैं इस ज्ञान सरोवर में आपके यहां बैठा, आपकी तरह जैसे बैठा, तो मुझे यहां पर बताया गया कि द टाइम इज साइक्लिक। मैंने ये अपने स्कूल में पढ़ा था कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। लेकिन किसी टीचर ने मुझे ये नहीं बताया कि हाउ डज द हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। लेकिन ये मैंने बचपन में सीखा था। यहां पर आकर मैंने देखा कि ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में भी ये बात कह रहे हैं कि द टाइम इज साइक्लिक। नाउ फॉर मी इट वॉज अ ग्रेट चैलेंज एंड इट वॉज यू नो मेरा बिलीफ पैटर्न उसको नहीं समझता था। लेकिन आज 16-17 वर्ष के बाद जब मैं इस बात को अनुभव करता हूं, मुझे महसूस होता है कि यस द टाइम इज साइक्लिक और वो हूबहू वैसा ही रिपीट करेगा। मैं आपसे सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड्स, अगले दो तीन दिनों में हमारे सिलेबस में भी ये बात आपके सामने रखी जाएगी कि इतिहास फिर से पुनरावृत्ति होती है। माई सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट इज, अगर आपको बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इंट्रोस्पेक्ट करिए कि वाई इट इज बीन टोल्ड। ऐसा तो नहीं कि हम भी उसी कैटेगरी के लोग में पड़ गए हैं जिन्होंने पाइथागोरस और गैलीलियो को बहुत ज्यादा अपोज किया। वी वेट, क्योंकि आज अगर विज्ञान ने इसका प्रूफ नहीं दिया है इसका मतलब वो झूठ है, ऐसा नहीं है। कैन आई इंट्रोस्पेक्ट। और खुशी की बात यह है कि आज जब मैं इस प्रोग्राम में आ रहा था तो बाहर बहुत सारे आपको प्रदर्शनी रखी गई है, उसमें एक मॉडल भी मैंने देखा। और इस मॉडल में हमारे बहुत बहुत डिवाइन ब्रदर मुखर्जी भाई मुझे समझा रहे थे, और मुखर्जी भाई से जो मैंने वो मॉडल समझा, मैंने उसको समझने का प्रयास किया, तो मुखर्जी भाई मुझे ये बता रहे थे कि स्वामी भाई अर्थ का जो रेवोल्यूशन हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट विच वी ऑल नो, वन इज रोटेशन, नंबर टू इज रेवोल्यूशन। ये तो मैं जानता था, लेकिन उन्होंने एक जो बात बताई कि इसके साथ साथ एक और मूवमेंट है जो उन्होंने कहा, इट इज ड्रिफ्टिंग ऑफ द ऑर्बिट। आई अगेन रिपीट, इट इज अ ड्रिफ्टिंग ऑफ द ऑर्बिट, जो उन्होंने अपने उस मॉडल में समझाने का प्रयास किया। मैं चाहूंगा अगले दो तीन दिन में यहां पर है, जब भी हमारे यहां से कोई ब्रह्मा कुमार भाई या बहन आपको ये कहेंगे कि टाइम इज साइक्लिक, और अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज उस मॉडल को मुखर्जी भाई से समझने का प्रयास करिए। तो मैंने कहा, मुखर्जी भाई से पूछा, ब्रदर ये मुझे समझने में इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से मुझे समझाया, बोला स्वामी भाई बिकॉज द ड्रिफ्टिंग ऑफ द ऑर्बिट यू कैन ओनली सी बिकॉज द सन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट होल सिस्टम, आपको वो समझने के लिए सन के ऊपर जाना पड़ेगा। कोई कैमरा आज तक सन के ऊपर नहीं गया है, तो जब हम सूर्य के ऊपर जाएंगे और सूर्य के ऊपर जाकर इस सिस्टम को देखेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द ऑर्बिट इज सो स्लो कि आप उसको नजर ही नहीं कर सकते। मतलब क्या है? और उन्होंने कहा अगर उसको नजर करना है तो स्वामी भाई आपको सूर्य चांद सितारों से बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू सी इट। नाउ नेचुरली व्हाट ही वाज स्पीकिंग सेंस, और इसलिए फिर उन्होंने लास्ट में बहुत मुस्कुराते हुए कहा, बोला स्वामी भाई समझ में नहीं आ रहा, नथिंग टू वरी, आप बस ये महसूस करो कि परमात्मा ने कहा है सत्यम शिवम सुंदरम है, आप समझकर आगे बढ़ो। नाउ व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, आई अंडरस्टूड कि स्वामी भाई वो ईश्वर जो है ना वो सिलेबस के बहुत ऊपर है, और उस ऊपर सिलेबस से देखकर उन्होंने आज आकर ये बात कह रहे हैं। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है द ओनली रीजन कुड बी फ्रेंड्स कि आई एम नॉट एबल टू गेट माई सेल्फ इन टू दैट फ्रीक्वेंसी, बस हम अपने आप को अपग्रेड करें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं आपको इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि वो टाइम साइक्लिक है या नहीं, 5000 वर्ष है या नहीं, उसको आप नहीं लेकर जाइए। मैंने 96 में मैंने किसी को क्वेश्चन नहीं किया, मैंने ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा, 5000 वर्ष मुझे अगर समझ में नहीं आता आता है मैं बाद में देखूंगा, एज ऑफ नाउ मुझे इस मेडिटेशन से क्या फायदा होता, लेट मी सी। शिवानी बहन आज सुबह कह रहे थे कि भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए, फॉर मी दैट मेड सेंस कि भाई मैं अपना कार्य में एक्सलेंस के लिए अगर मुझे गुस्सा नहीं होता तो बहुत अच्छा है, और उसके लिए अगर मेडिटेशन मुझे मदद कर रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, आई एम ओपन टू एक्सेप्ट इट। मैं देखूंगा जब गैलीलियो पाइथागोरस जैसे लोग यहां पर उत्पन्न हो जाएंगे, वो मुझे प्रूव करेंगे कि भाई इट्स 5000 ईयर साइक्लिक, दैट्स राइट, आई एम रेडी टू वेट, इतना तो मेरे में पेशेंस हो सकता ना, बट मेरी प्रेजेंट जो सिचुएशन है दैट इज लाइफ एक्सलेंस। इसलिए मैं उस टॉपिक को थोड़ा सा टच करूंगा, और जब मैं लाइफ एक्सलेंस की बात करता हूं, माय डियर फ्रेंड्स, काफी भाई बहन मुझे अनुभव सुनाते हैं, पिछले 17 वर्षों से साइंटिस्ट इंजीनियर्स का कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूं, लोग मुझे एक फीडबैक बहुत अच्छा देते हैं, कहते स्वामी भाई ज्ञान सरोवर के इतने सुंदर पवित्र वातावरण में ये सुनना सुनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाहर का वातावरण इज एब्सोल्युटली नॉट अप्रोप्रिएट। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं ये स्टेटमेंट कह रहा हूं तो मैं बहुत अवेयरनेस के साथ कह रहा हूं कि कल रात का जो आपने ब्रेकिंग न्यूज सुना है स्वामी भाई ने भी सुना है, पढ़ा है, देखा है, मैंने भी रूस पर रीड किया, और ऐसा नहीं कि हमारे जो यहां भाई बहने बैठे हैं दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री, नहीं, वी आर अवेयर। ये सब जानते हुए भी हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज का वातावरण में इतनी नेगेटिविटी है, और उस नेगेटिविटी में ये मेडिटेशन करना बहुत जरूरत है। ओपनिंग मेरे इंट्रोडक्शन में अस्मिता बहन ने बात बताई कि आई हैव अ यूनिक, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मुझे एक चांस मिला कि विश्व का सबसे हाईएस्ट बैटल स्कूल सियाचिन बैटल स्कूल, जहां पर अब इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट कुछ समय पहले चल रहा था, वहां पर जाकर मुझे सेशन लेने का चांस मिला, थैंक्स टू द राज्यों का मेडिटेशन जो मैंने यहां पर सीखा है, उसको सिखाने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से हमारी डिफेंस विंग को वहां पे निमंत्रण मिला। जब मैं वहां पर गया तो मैंने उनको ये बात कही कि वो युद्ध भूमि में थे, वो युद्ध भूमि में है। और बिलीव मी, उन्होंने जो मुझे कहा, वहां के कर्नल ने कहा, स्वामी भाई हमारा युद्ध किसी पाकिस्तान के सोल्जर से नहीं है, क्योंकि वो जिस तकलीफ को सहन कर रहे हैं हम भी सहन कर रहे हैं, देयर इज नो बाउंड्री इन बिटवीन। बोला हमारी सबसे बड़ी जो दुश्मन है वो प्रकृति है, एनवायरमेंट है, और अगर कुछ एवलांचे होगा तो उनको भी उतना ही तकलीफ होगा जितना हमें तकलीफ होगा, राइट? तो वो युद्ध भूमि में थे। तो उस युद्ध भूमि में मैंने उनको तीन बातें बताई जिसको मैं बताकर मैं वाइंड अप करूंगा, क्योंकि अर्जुन जो था वो भी युद्ध भूमि में था, और आज हम सभी बैठे हैं फ्रेंड्स, वी आर ऑल अर्जुन। अर्जुन का अर्थ ही होता है कि जो ज्ञान का अर्जन करने वाला है, एंड अर्जुन वॉज एन एक्सलेंट वॉरियर। लेकिन मैंने उन सभी सियाचिन ग्लेशियर में मैंने उन जवान और ऑफिसर्स को कहा कि जब अर्जुन युद्ध भूमि में पहुंचा तो वह अपना गांडीव, अपना धनुष उठा नहीं पाया। और अब भगवत गीता पढ़ लीजिए, भगवत गीता में भी राज्यों का जिक्र है, और पूरा राज्यों को देख लीजिए, कभी भी अर्जुन को कोई फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में नहीं बताया गया। अर्जुन को तीन बातें बताई, वही एक्शन प्लान बताकर मैं वाइंड अप करूंगा। थ्री पॉइंट्स फॉर लाइफ एक्सलेंट इज, फर्स्ट माय डियर फ्रेंड्स इज एक्सप्लोर, नंबर टू इज एक्सपेरिमेंट, एंड नंबर थ्री इज एक्सपीरियंस। आई रिपीट, नंबर वन इज एक्सप्लोर, नंबर टू इज एक्सपेरिमेंट, एंड नंबर थ्री इज एक्सपीरियंस। फर्स्ट, व्हाट आर वी सपोज टू एक्सप्लोर? अर्जुन को पहली बात बताए, हे अर्जुन आप अपना मन का ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ योर माइंड। जो आज का सुबह का सत्र में आदरणीय शिलू दीदी जी ने आपको यह बात बताई, राइट? और आज आपको मेडिटेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मेडिटेशन करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। शिवानी बहन इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, मैं एक स्टेप उसको आगे लेकर जाता हूं, राइट? एज ए टीचर, हम टीचर्स और पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। जस्ट इमेजिन करिए, एक दिन एक स्टूडेंट खड़ा होकर पूछेगा, मैडम व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? और अक्सर करके हम टीचर्स जवाब देते, डोंट आस्क क्वेश्चंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, राइट? हम सभी टेक्निकल भाई बहन ही बैठे, आप में से कोई भी खड़े होकर मुझे ये बता सकता है क्या कि व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? मैं काफी टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता हूं तो टीचर्स अलग अलग पर्यायवाची शब्द यूज करते, स्वामी भाई इज इट फोकस, इज इट ध्यान, इट इज एकाग्रता। मैं कहता हूं, माय डियर टीचर्स, यू आर यूजिंग सिनोनिम्स, आप पर्यायवाची शब्द यूज कर रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे को क्या करना है वो आप नहीं समझा रहे हो। आप यहां से जाते वक्त आप प्लीज इस विधि को जरूर सीख कर जाना, एकाग्रता, क्योंकि एक्सलेंस के लिए एकाग्रता बहुत ज्यादा जरूरत है। आज सुबह का सेशन को मैं थोड़ा सा आगे लेता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सीखिए और अपने बच्चों को, और विशेष कुछ समय के बाद अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये जरूर सिखाइए। कॉन्सेंट्रेशन में दो फैकल्टी जो आज शीलू दीदी ने बताया, एक है मन और दूसरा है बुद्धि, माइंड एंड इंटेलेक्ट। मन का काम है विचार करना, बुद्धि निर्णय करती है, लेकिन कैसे? द पावर टू विजुअलाइज, चित्रीकरण करना। कॉन्सेंट्रेशन का टेक्निकल डेफिनेशन है, वेरी सिंपल वर्ड, यू कैन अपग्रेड माई वर्जन, व्हेन द माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क टूगेदर। जब मन और बुद्धि एक साथ काम करता है उसको एकाग्रता कहते हैं। आप में से कुछ सीनियर सिटीजन अनुभवी होंगे, पुराने जमाने में जब बुश टेप रिकॉर्डर होता था ना, तो हम लोग दो बटन को एक साथ प्रेस करते थे, दैट इज कॉपी एंड सॉरी प्ले एंड रिकॉर्ड। आज के जमाने में कॉल इट कॉपी पेस्ट, और वो रिकॉर्डिंग हो जाता था। अर्थात जब मन और बुद्धि जब एक साथ काम करता है वो हमारा संस्कार, हमारी मेमोरी बन जाती है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछूंगा, मन बुद्धि एक साथ जब काम करता है उसको एकाग्रता कहते हैं। आप सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर से मेरा प्रश्न ये है कि आपके बच्चों का टाइम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? अर्थात हमारे बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं, मन और बुद्धि एक साथ हमारे बच्चों का काम कर रहा है, कैन यू गेस माई डियर फ्रेंड्स व्हाट कुड बी द टाइम ड्यूरेशन? गेस करिए कितना टाइम होगा, गेस करिए ना कितना टाइम होगा जब मन और बुद्धि एक साथ काम करता है? 5 to 10 minutes। वाओ, सुनकर कितना अच्छा लगता है बहन जी, आपके बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं, आई एम सो हैप्पी, और हमारा देश का भविष्य कितना अच्छा है। अच्छा लगा सुनकर, 5 to 10 minutes, स्पीक्स अबाउट अ वेरी ग्रेट ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। बट मैं आपको रियलिटी बताता हूं, मैंने बच्चों पर बहुत स्टडी किया है, हमारे बच्चों का मन और बुद्धि जब एक साथ काम करता है द टाइम ड्यूरेशन इज हार्डली 10 seconds। आई रिपीट, हार्डली 10 seconds. अच्छा लगा सुनकर, 300 seconds है तो 600 seconds कितना अच्छा लगता है सुनकर, इट्स हार्डली 10 seconds. अच्छा दूसरा प्रश्न, बच्चे छोड़िए हम अपनी बात लेते हैं, हमारा टाइम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना है? अच्छा एक बात बताइए, बच्चों से ज्यादा है या कम है? वाओ, इसलिए आप साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट पीपल है ना, कम है. अब माय डियर फ्रेंड्स, आज से जब भी कोई भाई या बहन आपको मेडिटेशन कराएंगे ना, इस सेशन के बाद हमारे आदरणीय डॉक्टर निरंजना बहन जी मेडिटेशन कराएंगे, आपको लगता है कि ये बहने क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे स्पीकिंग? फ्रेंड्स चेक करना अपना पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हमारे आदरणीय डॉक्टर निरंजना बहन जी जो जो बोलेंगे वैसे ही वैसे अपनी बुद्धि का चित्र बनाते जाना. और कहीं ना कहीं दीदी हमें ओ सूर्य चांद तारागण के ऊपर लेकर जाने का प्रयास करेंगे, जा सकते हो तो कोशिश जरूर करना, और अगर कोई पहुंच पाएगा वहां पर देन आपको कोई भी सिस्टम आपको कंफ्यूज नहीं करेगी क्योंकि आप बहुत ऊपर स्थिति पर हो, लेकिन अपनी बुद्धि के द्वारा वहां जाने का प्रयास करना. और एक सिंपल सा निवेदन करता हूं, बाय चांस मेडिटेशन के समय पर या कोई स्पीकर अगर सेशन लेता है और अगर किसी का मोबाइल रिंग होता है, प्लीज डू नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, प्लीज उनको एकदम घूर के देखना भी नहीं है? प्लीज अगर किसी का भी मोबाइल रिंग होता है तो बहुत प्यार से देखकर कहना वाह साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाह, है ना, कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, एक्सलेंट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन नेवर गेट डिस्टर्ब, मतलब आवाज होते हुए भी हल्कापन. मैं बस एक बात, क्योंकि शायद अस्मिता बहन मुझे इंडिकेशन दे रहे कि टाइम हो गया, लेकिन एक बिलीफ सिस्टम को और मैं आपको क्वेश्चन करके, क्योंकि आई जस्ट टोल्ड अबाउट एक्सप्लोर एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस, आगे हम कभी आपको बताएंगे क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, लेकिन एक बिलीफ पैटर्न को मैं आपको पुटअप करके जाता हूं. आई एम श्योर अस्मिता बहन विल गिव मी 3 minutes फॉर दैट. और वो बिलीफ पैटर्न ये है कि यू नो, जब मैं पहली बार यहां मेडिटेशन के लिए जब मैं 96 में आया तो हमको बताया गया कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आंखें थोड़ी खुली रखना. माय गॉड, मैंने कहा बहन जी क्या कह रहे हैं स्टेज पर खड़े होकर, आज तक तो हमने सुना था प्रेयर मेडिटेशन करते वक्त आंखें बंद करनी चाहिए और हमारी दीदियां कह रहे हैं आंखें थोड़ी खुली रखो. तो मैंने क्या कि अपॉइंटमेंट लिया और बहन जी से पूछा कि बहन जी ये ना मुझे बिल्कुल जम नहीं रहा है. तो बहन जी ने बहुत प्यार से मुझे जवाब दिया, बोले स्वामी भाई अच्छा आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने कहा दीदी मैं तो वैसे टेक्निकल क्वालिफिकेशन हूँ, इंजीनियरिंग किया है. बोला अच्छा स्वामी भाई इंडस्ट्री में जब काम करते हैं लोग तो एकाग्रता चाहिए कि नहीं? मैंने कहा दीदी बहुत चाहिए एकाग्रता, क्योंकि सेफ्टी का सवाल है. बोला वो जब काम करते हैं तो आंखें खुली रखते हैं या आंखें बंद करते हैं? मैंने कहा दीदी आंखें तो खुली रखनी पड़ती है. बोला अच्छा स्वामी आप ड्राइव करते हो? मैंने कहा हाँ ड्राइव करता हूँ. बोला ड्राइव करते वक्त एकाग्रता चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने कहा दीदी वो तो एकाग्रता चाहिए, तो आंखें बंद करके ड्राइव करनी चाहिए कि आंखें खुली रखकर ड्राइव करना चाहिए? मैंने कहा दीदी क्या बात करते हो, तो आंखें तो खुली रखकर करनी चाहिए ना. फिर बोला अच्छा स्वामी भाई अभी क्या करते हो आप? मैंने कहा शिक्षक हूं. बोले बच्चों को पढ़ाते हो? मैंने कहा हाँ. तो बच्चों को पढ़ते वक्त एकाग्रता चाहिए कि नहीं? मैंने कहा दीदी आंखें खुली रखकर एकाग्र करें मेरे बच्चे, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है. सर राजयोग इज नॉट 5 to 7 minutes हियर, राजयोग इज एन अवेयरनेस. हर पल हर क्षण जो मैं कर्म कर रहा हूं आई एम अवेयर, जो मैं बोल रहा हूं आई एम अवेयर, ओके मैं जो सोच रहा हूं कैन आई ब्रिंग माई सेल्फ टू दैट स्टेट. एक्सलेंस के लिए एक छोटा सा डायलॉग बताकर मैं अंत करूंगा और मैं चाहूंगा कि ये डायलॉग आप घर में जाकर जरूर अपने बच्चों से बोलें. आप में से कितने भाई बहन ये डायलॉग बोलेंगे वो हाथ उठाएं? वाओ, इसलिए मुझे आप साइंटिस्ट इंजीनियर बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि एक ग्रुप से मैंने पूछा आप में से कितने बोले, एक खड़ा होकर कहता स्वामी भाई पहले डायलॉग बोलो फिर हम डिसाइड करेंगे कि बोलना है कि नहीं. बाप रे आप इतने मुझे अच्छे लगे. तो आज एक काम करना, एक शिक्षक होने के नाते आप एक्सलेंस की जर्नी पर हो, आपके बच्चों को संदेश देना, घर में जाकर अपने बच्चों से बोलना आप जो हो जैसे हो हमारे राजा और मीठे बच्चे हो. आप में से कितने बोलेंगे वो हाथ उठाओ. हाँ आप लोग की मेमोरी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं भूल जाएंगे कि नहीं, आप हमारे साथ रिपीट करिए. बोलिए आप जो हो, अच्छा बच्चे भी बोल रहे वेरी गुड, आप जो हो जैसे हो राजा और मीठे बच्चे हो. That's very very important. You know, I was doing a program in Mumbai. तो एक पिता आकर कहते हैं स्वामी भाई आपका डायलॉग बहुत अच्छा लगा बट स्मॉल करेक्शन. मैंने कहा यस आई एम ओपन फॉर करेक्शन. व्हाट करेक्शन? और एक्चुअली मेरी साइड में बेटी बैठी थी, मैंने सोचा पता नहीं भूल जाऊंगे कि नहीं, वहीं चालू हो गए आप जो हो जैसे हो राजा बच्चा हो. तो बेटी खड़े होकर कहते पापा राजा बच्चा नहीं बोलो रानी बच्ची बोलो. भारत सरकार और खास करके मुझे पता है राजस्थान सरकार इज ऑल्सो वेरी कंसर्न अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. आज इस संस्था में खड़े होकर मुझे बहुत गर्व है क्योंकि आई एम अ पार्ट आई एम अ फैमिली ऑफ दिस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय विच इज द लार्जेस्ट विमन लेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। पिछले 16 वर्षों से ये ब्रह्मा कुमारी बहनों ने स्वामी भाई को ये सिखा रहे हैं कि स्वामी भाई आपकी दृष्टि आपकी वृत्ति आपकी कृति कितनी पवित्र होनी चाहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में जाकर अपने बच्चों को उस फीलिंग से देखना और राजयोग क्या है तो अपने बच्चों को जरूर सिखाना जो बच्चे बचपन में सीखते हैं। अब बचपन में वो गीत गाते ना ट्विंकल ट्विंकल, हाँ स्टार मतलब कौन है महात्मा, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, यू कौन है भगवान। अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, दादा ने बच्चों को ये जवाब दिया, अपने पोत्रों को जवाब दिया, बच्चे आप स्टार हो आप बच्चे हो, वो जो डायमंड है वो सूर्य है वो आप आत्मा का पिता हो। दिस रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड एंड द फादर इज वॉट इज कॉल्ड एज राजयोग। अंत में मैं आपको एक छोटी सी बात बताकर वाइंड अप करूंगा कि आसमान में इतने सितारे हो कि सिर्फ प्रकाश दिखाई दे, आसमान में इतने सितारे हो कि प्रकाश दिखाई दे। माय डियर डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके जीवन में इतनी खुशियां आए कि आपके लाइफ में सिर्फ एक्सलेंस दिखाई दे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।